Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 10, Verse Number 33. Is आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरण्डस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। शृणु सुश्रोणि वक्ष्यामि गीता सुस्थितिमात्मनः। त्राणि पञ्च जानीह पञ्चाध्यायाननुक्रमा दशोऽध्यायान् भुजाश्चैकम् उदरं दौ पदाम्बुजे एवमष्टादशोऽध्यायो वाङ्मयीमूरतीश्वरी। श्रीमद् भगवद् गीता मात की जय हो। चैप्टर 10 वर्स नंबर 33। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र अमृतमयी शब्दों को मेरे साथ साथ रसा साधन करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं,
अक्षराणाम अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाता हम विश्वतो मुखः अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः।
शब्दार्थ अक्षराणाम यानी अक्षरों में, अकार यानी अकार अर्थात पहला अक्षर, अस्मि मैं हूँ, द्वंद्व यानी द्वंद्व सामास, समासिकस्य च यानी समासिक शब्दों में, च तथा अहम मैं हूँ, एव निश्चय ही अक्षय यानी शाश्वत काल, काल यानी समय, धाता यानी सृष्टा अहम मैं हूँ, विश्वतो मुखम अर्थात ब्रह्मा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद अक्षरों में मैं अकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ, मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे, हम सब ध्यान से श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य को श्रवण करेंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अकार अर्थात संस्कृत अक्षर माला का प्रथम अक्षर अ वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। अकार के बिना कोई स्वर उच्चरित नहीं हो सकता, इसीलिए यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के सामासिक शब्द होते हैं जिनमें से राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस सामास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में हैं, अतः यह सामास द्वंद्व कहलाता है। समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है क्योंकि यह सबों को मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है क्योंकि समय आने पर प्रलयाग्नि से सब कुछ लय हो जाएगा। सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान है, अतः वे भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है। श्री प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारणं। दसवां अध्याय जिसका शीर्षक है विभूति योग, इसमें भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन एक प्रार्थना करते हैं। अर्जुन कहते हैं श्लोक नंबर 17 में, कथम विद्यामहं योगिन त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। हे कृष्ण, हे परमयोगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? तो भगवान से अर्जुन ने ये विनती की कि क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं, तो आप इस भौतिक जगत के ही जो कैटेगरीज हैं उनमें आप बताइए कि किन किन रूपों में आपको स्मरण किया जा सकता है, क्योंकि आपको जब तक जीव स्मरण नहीं करेगा तब तक तो कल्याण होना संभव नहीं है। तो भगवान कहते हैं, हाँ अर्जुन, मैं बताता हूँ। प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, मतलब जो भी मुख्य है, सुपरलेटिव इन एवरी कैटेगरी, हर एक कैटेगरी में जो सुपरलेटिव है, जो ग्रेटेस्ट है, जो हाईएस्ट है, उसमें आप मुझे समझो कि वो मैं हूँ। तो बहुत सारे हम अभी तक पढ़ के आ गए जिसमें भगवान ने बताया कि दैत्यों में मैं प्रह्लाद हूँ, और जो समुद्र के जीव हैं उनमें शार्क हूँ, मछलियों में मगर हूँ, और पवित्र करने वालों में हवा हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ। बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ के आए और आज भगवान बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अक्षराणाम अकारोस्मिन। ये ऐसी चीज है जो जीव हर क्षण जो है उसको फेस करना पड़ता है, मतलब हर एक जब हम मुख से आवाज निकालते ना तो उसमें अ जरूर आता है। अक्षर, वैसे तो अक्षर का मतलब होता है अल्फाबेट्स। जैसे अल्फाबेट्स होते हैं ना उसमें दो टाइप होते हैं, एक तो वर्णमाला होती है क ख घ ख ख ङ, और उसके बाद वोवेल्स होते हैं अ आ इ ई उ ऊ ए ए, इंग्लिश में भी होता है ना ए ई आई ओ यू। तो भगवान कहते हैं अक्षराणाम अकार उसमें, अकार यानी जो फर्स्ट वोवेल है अ, अ के बगैर कोई भी शब्द क्रिएट नहीं हो सकता। जब तक अ नहीं लगेगा तो उसके साथ उसके बगैर कोई भी अल्फाबेट हम माउथ से उच्चारण नहीं कर सकते। वास्तव में तो यहाँ पर संस्कृत शब्दों की बात श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि अकार अर्थात संस्कृत अक्षर माला का प्रथम अक्षर, जो संस्कृत है उसका प्रथम अक्षर जो अ है वैदिक साहित्य का शुभ आरंभ है। जो भी शास्त्र है उसका शुभ आरंभ ओम से होता है, अ से होता है। तो अ जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, अकार के बिना कोई स्वर उच्चरित नहीं हो सकता है। अभी ये जो संस्कृत शब्द, संस्कृत जो लैंग्वेज है, संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल टंग्स। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें उनकी मात्रा जो माता है वो संस्कृत है। ओरिजिन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, सारी पहले क्या होता था, बहुत बहुत पहले युगों में दूसरी कोई लैंग्वेजेस नहीं होती थी। इस पृथ्वी पर जो भी कल्चर्ड लोग होते थे, जो भी शिक्षित लोग होते थे, वो केवल संस्कृत में ही बात करते थे। उनको मतलब बहुत ऐसा कभी भी नहीं होता था, उनको संस्कृत ही उनको बोलना आती थी। लेकिन संस्कृत को पता है एक दूसरा भी उसका नाम है देवनागरी, यानी देवताओं के लोकों में बोली जाने वाली भाषा। ये संस्कृत जो है वो इतनी पवित्र भाषा है कि देवताओं के लोक में जब हम बात करते हैं, जब देवता आपस में बात करते हैं तो संस्कृत में बात करते हैं। लेकिन आज इस कलयुग का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि किसी को पता ही नहीं है कि कभी हमें देवताओं के लोक में जाना पड़ेगा तो फिर हम है ना संस्कृत में बात करें या संस्कृत के शब्दों को पढ़ें। ऐसा मतलब अगर क्लास हो रही होती है तो जो क्लास करने वाले वक्ता है ना वो भी संस्कृत शब्दों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और है ना क्योंकि श्रोतागण को इंटरेस्ट नहीं है। श्रोता चाहते हैं बस हम लोगों को एंटरटेन किया जाए क्लास के द्वारा, हमें वो शब्द श्रवण करने में कोई रुचि नहीं है। जो भगवान ने कह दिया सो कह दिया, बस आप हमें कुछ लतीफे सुना दो, कुछ स्टोरी सुना दो जिससे हमारा मनोरंजन हो जाए। लेकिन वास्तव में ये जो शब्द है ना जो भगवान के मुखारविंद से निकलते हैं, उन शब्दों में बहुत बल होता है, बहुत पावर होता है। इसलिए हमें इन शब्दों को श्रवण करके उनके द्वारा समझना चाहिए कि भगवान हमें क्या कह रहे हैं। तो पहले के युगों में सब लोग संस्कृत में बात करते थे, लेकिन जब फिर धीरे धीरे जब देशों का विभाजन हुआ और जब लोग दूसरे देशों में जाते तो फिर क्या होता था, उनकी लैंग्वेज मिक्स हो गई, मिक्सअप लैंग्वेज हो गई। जैसे आज हम यहाँ पर अगर पाकिस्तान में रहकर यदि हिंदी लैंग्वेज भी हम लोग यदि उसका भी उपयोग करते हैं तो भी हम उसमें एसेंस जो होता है वो उर्दू जैसा आता है। तो ऐसा ऐसे करते करते लैंग्वेजेस जो हैं वो चेंज होती गई, इसलिए हर लोग की लैंग्वेज अलग अलग होती गई। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब क्या, भगवान क्या बता रहे हैं, अक्षराणाम अकारोस्मि, जितने भी अक्षर हैं उनमें अ शब्द जो है वो बेस है, उसकी जो बेस है वो क्या है, अकार। जैसे अगर हम क बोलेंगे तो क इज अ मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स क एंड अ, इसी तरह ख ख जो भी हम क ख घ घ ङ प फ भ जो वर्णमाला बोलते हैं, जो वर्ग होते हैं ना, ये जो वर्ग क ख घ घ ङ प फ भ भ म त छ झ झ ञ, तो उन सब के साथ अ शब्द जो है वो इंक्लूड होता है। अ उसके साथ जैसे हम संस्कृत भी पढ़ते हैं तो उसमें कैसे अ को अगर निकाल देते हैं तो शब्द का मतलब ही अलग हो जाता है। इवन अ अगर लग जाता है ना सिर्फ, तो उस शब्द का, उस वर्ड का मतलब चेंज हो जाता है। जैसे कर्म का मतलब होता है कार्य और अकर्म का मतलब होता है कार्य नहीं, निष्काम। मृत का मतलब होता है मरा हुआ और अमृत मतलब जिसका कभी भी मरण ना हो। तो अ जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल शब्द है। यही एज इट इज श्लोक जैसे अक्षराणाम अकारोस्मी, सेम श्लोक जो है वो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में जब भगवान उद्धव गीता, जैसे अभी भगवान अर्जुन को भगवत गीता बता रहे हैं, और उसी तरह से भागवतम में एक 11वें स्कंद में भगवान उद्धव गीता बताते हैं, उसमें भगवान बहुत ही सुंदर रीति से एक जीव इस भौतिक जगत से किस प्रकार से जन्म मरण के चक्कर से छूटकर कृष्ण को प्राप्त करता है उसके विषय में बताते हैं। और उसी में उद्धव एक प्रश्न पूछते हैं कि मैं आपकी विभूतियों के विषय में जानना चाहता हूँ कृष्ण। तब कृष्ण अर्जुन कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि उद्धव जो प्रश्न तुम अभी कर रहे हो वही प्रश्न अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में किया था और मैंने उसको अपनी मुख्य विभूतियों के विषय में सुनाया था, उन्हीं के विषय में अभी भी मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। और उसी में यही सेम बात भगवान ने कही अक्षराणाम अकारोस्मि। वैसे तो दूसरे दूसरे भगवान ने अपने विभूति बताई है लेकिन ये सेम बात बताई है कि अक्षरों में मैं अकार हूँ, क्योंकि यह अकार हर शब्द का आदि स्वर है। जब तक हम अकार का उच्चारण नहीं करते तो कोई शब्द उच्चारण नहीं कर सकते। इसका मतलब है जब भी कोई शब्द मुख से निकले तब उसमें अकार तो होगा और उसके साथ हमें कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, कृष्ण को याद करना चाहिए। अर्जुन भगवान से यही पूछ रहे हैं कि मैं किन किन रूपों में तुम्हें याद करूं कृष्ण। तो हर एक शब्द जब मुख से निकलता है, जब वो हमारे हृदय को टच करता है, कितना आनंद आता है जब हम एक एक शब्द भगवत गीता का पढ़ रहे होते हैं तो कैसा लग रहा होता है। तो हमें यह सोचना चाहिए हर एक शब्द के अंदर कृष्ण का पावर है, इसलिए वो इतना मीठा लग रहा है। तो ये अकार जो है यहाँ भगवान कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि, आगे कहते हैं द्वंद्व सामासिकस्य च। द्वंद्व अभी बहुत प्रकार के सामासिक शब्द होते हैं। सामासिक शब्द किसको बोलते जानते हैं आप? जब दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है उसको कंपाउंड वर्ड कहते हैं ना, उसको सामासिक। यहाँ पर संस्कृत में उसको बोलते हैं सामासिकस्य, यानी दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बना। तो वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग मायनों में होते हैं। जैसे हाई का मतलब होता है ऊपर और वे का मतलब होता है रास्ता, लेकिन इन दोनों शब्दों को मिलाकर हम बोलते हैं हाईवे, है ना, और उसका मतलब एकदम अलग हो जाता है। रन का मतलब होता है दौड़ना और वे का मतलब होता है रास्ता, लेकिन रनवे उसका अलग। तो ये सामासिक है इनको। और भगवान कहते हैं द्वंद्व समासिकस्य च, कि समासिकों में मैं द्वंद्व हूँ। मतलब वैसे तो अनेक प्रकार के द्वंद्व समासिक होते हैं, परंतु जब दोनों ही शब्द उतने ही महत्वपूर्ण हों तो उसको द्वंद्व समासिक बोलते हैं। यानी कि वैसे तो जब दो शब्दों को एक साथ जोड़ा जाता है तो दोनों जरूरी नहीं है कि एक जितने ही महत्वपूर्ण हो। जैसे एक शब्द है बाल गोपाल। अब बाल तो एक साधारण शब्द है, यानी छोटा बालक, और गोपाल जो है वो भगवान का नाम है। तो इसमें गोपाल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो कृष्ण का नाम, वरना बाल तो किसी को भी बोल सकते हैं बाल गोपाल, है ना। तो इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट, इसी तरह से हम देखें सुंदर गोपाल, अभी सुंदर आप किसी को भी बोल सकते हो लेकिन गोपाल जो है वो कृष्ण का नाम है। जब तो इसमें दोनों शब्दों में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या शब्द है? बाल नहीं है, गोपाल है, दोनों में गोपाल। लेकिन यहाँ पर क्या श्रील प्रभुपाद जी बताए, द्वंद्व सामासिकस्य च। द्वंद्व मतलब जब दोनों शब्दों का महत्व एक जैसा हो। यहाँ जैसे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि संस्कृत में कई तरह के सामासिक शब्द होते हैं जिनसे राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस सामास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में हैं, अतः यह सामास द्वंद्व कहलाता है। यानी राम और कृष्ण उनमें दोनों ही सेम इम्पोर्टेंस है, जैसे राधा कृष्ण दोनों ही सेम इम्पोर्टेंट है। जब ऐसा सामासिक जब दोनों शब्दों के इम्पोर्टेंस जो है वो सेम हो तो उसको द्वंद्व समास कहते हैं और भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। लेकिन वैसे तो समासिक अलग अलग होते हैं, जैसे कृष्णदास, हम दो शब्दों को मिलाते हैं, कृष्ण इम्पोर्टेंट है, दास तो कोई भी हो सकता है, और उसी तरह से हरि नाम, तो नाम तो एक साधारण बात है, लेकिन वो क्योंकि नाम हरि का है तो हरि इम्पोर्टेंट। और एक दूसरी किस्म के है ना समासिक होते हैं, जैसे आप एक शब्द बोल रहे हो लेकिन वो किसी तीसरे पर्सन को, ये दोनों शब्द जो हैं वो किसी तीसरे पर्सन को इंडिकेट करने के लिए, उनकी अपनी कोई महत्व नहीं है लेकिन वो किसी पर्सन को इम्पोर्टेंट को इंडिकेट करते हैं, इसलिए उसको इम्पोर्टेंट प्राप्त होती है। जैसे पीताम्बर कहते हैं येलो कलर को, धारी मतलब पहनने वाला, जो येलो कलर की धोती को धारण करता है, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्ट से भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं पीताम्बरधारी, क्योंकि कृष्ण जो है वो पीले कलर की धोती को धारण करते हैं। तो दो शब्द जब जुड़ते हैं तो अलग अलग उसकी कंडीशन हो जाती है, अलग अलग कंडीशन में, कहीं पर पहला शब्द ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कहीं पर दोनों जो है वो सेम इम्पोर्टेंट होते हैं, कहीं कहीं पर दोनों शब्दों की इम्पोर्टेंट नहीं होती है लेकिन तीसरे जो व्यक्ति को इंडिकेट करता है वो व्यक्ति इम्पोर्टेंट होता है। और वैसे संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एक शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं, बहुत सारे बहुविधि समास इसको कहते हैं, बहुविधि समास। अभी क्या होता है, संस्कृत जो है वो चिकनी मिट्टी की तरह है, चिकनी मिट्टी की तरह है, यानी उसको आप जैसे भी मरोड़ते हो वैसे उसका मतलब निकल जाता है। तो संस्कृत जो उसमें कुछ तो समास ऐसे होते हैं जो हमको समझ में नहीं आता है कि इसका अर्थ हम किस तरह से निकालें। जैसे मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा कि बहुविधि समास किस प्रकार से होते हैं। ये कथा भागवतम महापुराण के छठे स्कंद में आती है। एक ब्राह्मण है, उसका नाम है तुष्टा। तुष्टा ब्राह्मण जो है उसका पुत्र है विश्वरूप, और विश्वरूप के तीन सर हैं। वो तुष्टा जो है वो अपने पुत्र विश्वरूप को कहता है कि आप देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो। जब वो देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करने जाता है अपने पिता की आज्ञा से, तो वो अग्नि कुंड बनाता है, उसमें आहुति डालता है और देवताओं के नाम की आहुति डालता है, जिससे मतलब वो जो विश्वरूप है वो बहुत ही सुंदर रीति से सारे मंत्रों को उच्चारण करता है और बहुत ही सुंदर यज्ञ कर रहा होता है। चंद्र के नाम की आहुति डालता है, इंद्र के, वरुण के, अग्नि, सारे देवताओं को प्रसन्न कर देता है। उसकी आहुति को स्वीकार करके सारे देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु जो ये विश्वरूप है वो एक और भी कार्य करता है साथ में। वो गुप्त रीति से असुरों को भी आहुति प्रदान करता है, मतलब देवताओं को पता ना चले इस प्रकार विश्वरूप गुप्त रीति से असुरों के नाम भी लेता रहता था और उनको भी फल देता था। वो ऐसा क्यों करता था? क्योंकि विश्वरूप का संबंध जो है वो देवताओं के साथ तो था परंतु असुरों के साथ भी था, तो वो क्या करता था, वो दोनों को प्रसन्न करना चाहता था। लेकिन वो चाहता था कि देवताओं को मेरी इस बात का पता ना चले, क्योंकि जब देवताओं को पता चलेगा, क्योंकि देवता जो है वो असुरों के, ये दोनों आपस में शत्रु हैं, तो देवता जो है वो कभी भी मुझे फिर स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि मैं असुरों को भी आहुति देता हूं। तो लेकिन फिर भी एक दिन इंद्र को पता चल गया कि जो विश्वरूप है वो असुरों को भी आहुति देता है। उसने विश्वरूप की गर्दन को काट कर इंद्र ने उसको मार डाला, क्योंकि इंद्र से ये सहन नहीं हुआ कि ये हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता था। तो उसने क्या किया, विश्वरूप को मार डाला। जब तुष्टा को पता चला तो वो बहुत ज्यादा क्रोध में आ गया और इंद्र के ऊपर बहुत ज्यादा क्रोध में आ गया और उसने एक यज्ञ किया। उसको ऐसा लगा कि उसने मेरे पुत्र को मारा है, एक ब्राह्मण को मारा है, तो इंद्र को भी सजा मिलनी चाहिए। तो तुष्टा ने एक यज्ञ किया, उसका उद्देश्य क्या था कि ऐसे व्यक्ति की उत्पत्ति हो जो इंद्र का वध करे। तो उस यज्ञ में उसने एक मंत्र उच्चारण किया जिसके अंदर उसने बोला इंद्र शत्रु, मतलब ऐसे बोला इंद्र शत्रु यज्ञ। अभी ये समास की बात कर रहे हैं, बहुविधि समास। बहुविधि मतलब एक ही शब्द के अनेक मतलब निकल सकते हो। तो इंद्र शत्रु का मतलब है कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इंद्र का शत्रु बने और उसका वध करे। परंतु उस मंत्र का एकदम अपोजिट रिएक्शन हुआ। शब्द उच्चारण उसने इस तरह से किए कि उसकी बदली में उसको एक ऐसे व्यक्ति की प्राप्ति हुई जिसका शत्रु इंद्र बन गया। मतलब उसका उस इसी शब्द का इंद्र शत्रु का ही मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये बना कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका शत्रु इंद्र बने और इंद्र उसका वध कर दे। और इसी तरह से उनका जो उसके उपरांत यज्ञ के उपरांत जो उनको व्यक्ति उत्पन्न हुआ प्राप्त हुआ वो जानते कौन है, वो इंद्र से शत्रुता नहीं कर रहा था लेकिन वो पैदा हुआ तभी से इंद्र उसका शत्रु बन गया था। और वो बहुत बहुत शक्तिशाली था, उसका नाम था वर्त्रासुर। वर्त्रासुर जो है वो पहले जन्म में राजा चित्रकेतु बना था और माता पार्वती ने उन्हें श्राप दिया था और इंद्र के साथ उनका युद्ध हुआ था। युद्ध के समय उसने इंद्र को ज्ञान दिया था और कहा था कि भगवान की भक्ति, भगवान का हृदय के अंदर जब ज्ञान हो जाता है तब भले आप मुझे मार भी डालो फिर भी आप हार जाओगे, मैं तो फिर मर के भी जीत जाऊंगा। तो ये यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि संस्कृत शब्दों में क्या होता है कि अलग अलग बहुविधि समास होते हैं। एक दूसरा शब्द जब राम सेतु बना रहे थे उस समय श्री राम ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रामेश्वर की स्थापना की और उस समय शिवजी ने कहा, श्री राम ने कहा, राम जिसके ईश्वर है वही रामेश्वर है, है ना। राम ईश्वर यानी राम जिसके सॉरी श्री राम ने कहा कि वो जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। तो फिर है ना, ईश्वर का मतलब वैसे होता है शिव, वैसे ईश्वर का मतलब होता है क्रिएटर, लेकिन शिव को भी ईश्वर बोला जाता है। जब शिवजी ने ये सुना कि श्री राम ने रामेश्वर की व्याख्या ये दी है कि जो राम का ईश्वर है वो ही रामेश्वर है, तो शिवजी ने कहा नहीं नहीं, रामेश्वर की सही व्याख्या ये है कि राम जिसका ईश्वर है वही रामेश्वर है। तो कहने का अर्थ ये है कि संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है कि एक ही शब्द के अनेकों अर्थ निकलते हैं। इसीलिए कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि जो मायावादी हैं वो भी सेम भगवद गीता पढ़ते हैं और उनका अर्थ बिल्कुल अलग निकालते हैं। तो शब्दों के क्योंकि विभिन्न अर्थ निकल सकते हैं इसलिए अलग अलग समास होते हैं, लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पर, द्वंद्व सामासिकस्य च, जितने भी सामास हैं उनमें से जो द्वंद्व सामास है यानी दोनों शब्द सेम इम्पोर्टेंट हो, जैसे यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिनमें राम कृष्ण जैसे दो हैं शब्द द्वंद्व कहलाते हैं, इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी स्वरूप में है अतः यह समास द्वंद्व समास कहलाते हैं, तो इसको द्वंद्व समास कहलाते हैं। ये समझ में आ? तो जहां पर भी जब भगवान के मतलब कोई भी शब्द के जब सेम इक्वल वर्ड्स होते हैं, इक्वल मीनिंग होते हैं, सिमिलर मीनिंग होते हैं और द्वंद्व होते हैं वो, तो उसको हम भगवान का स्वरूप मान सकते हैं। आगे भगवान कहते हैं अहम एवाक्षयः कालो, अहम एवाक्षयः कालो। अक्षय का मतलब होता है जो कभी भी जिसका कभी भी अंत ना हो। जैसे शुरू वाला जो शब्द है ना अक्षर, वैसे तो अक्षर अल्फाबेट को भी कहते हैं लेकिन अक्षर का एक मतलब ये भी होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे अकार जो है वो कभी समाप्त नहीं होता है और उसी तरह से भगवान अभी अभी कह रहे हैं अहम एवाक्षयः कालो, मैं कभी न समाप्त होने वाला समय हूं। मतलब भगवान कह रहे हैं वो समय जिसका कभी भी क्षय नहीं होता है, अक्षय कालो, कभी भी क्षय नहीं होता है वो मैं हूं। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं हर एक वस्तु का अंत हो जाता है। एक समय आता है जब हमारा शरीर समाप्त हो जाता है, हमारा घर समाप्त होता है, हमारी पोजीशन समाप्त हो जाती है, हर एक वस्तु का अंत हो जाता है, परंतु समय का कभी भी अंत नहीं होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि जो समय अक्षय समय जो है वो यहाँ पर प्रलय के देवता महादेव शिव को इंडिकेट कर रहा है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है। काल यानी समय, अहम एवाक्षय कालो, काल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ काल, ये समय का क्या फंक्शन है। जब समय, जब काल होता है, महाप्रलय आता है, तो हर एक वस्तु का अंत हो जाता है। और जैसे अभी भी क्या होता है, धीरे 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 जब समय व्यतीत हो जाता है तो हर एक वस्तु का अंत हो जाता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सब कुछ अंत हो जाता है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे प्रेजेंट है वो पास्ट में बदल जाता है, पास्ट जो है वो फ्यूचर में चेंज हो जाता है, और धीरे 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 सब कुछ समाप्त हो जाता है। हमारे पास जो कुछ भी है वो धीरे 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 काल के हाथों से क्षय हो जाता है। एक दिन हमारा शरीर भी समाप्त हो जाता है, मृत्यु आ जाती है, प्रलय हो जाता है, सारे के सारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, अहम एवाक्षय कालो, मैं वो काल हूँ जो सब कुछ को समाप्त कर देता है, लेकिन स्वयं कभी समाप्त नहीं होता। काल कभी भी समाप्त नहीं होता है, वो पहले भी था, अब भी है और सदैव रहेगा। तो और आगे भगवान कहते हैं, बहुत ही सुंदर बात, दाता हम विश्व तो मुखम। दाता का मतलब होता है सृष्टा। जैसे इस भौतिक जगत में हर कोई अपने आप को सृष्टा मानता है कि मैंने ये चीज मैंने बनाई है तो मैं इसका सृष्टा हूँ। अगर देखा जाए तो ये सही भी है, हर कोई व्यक्ति थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी का सृष्टा तो है ही है। जैसे घर में बैठी हुई महिला जो है वो रोटी बनाती है तो बोलेगी ना कि ये रोटी मैंने बनाई है, परंतु वो रोटी के इंग्रेडिएंट्स उसने नहीं बनाए, वो उसका पति लेके आया है। वो पति लेके तो आया है अपने धन से, लेकिन वो उसने बनाए नहीं है, वो फैक्ट्री से आए हैं। फैक्ट्री में भी वो अनाज वहां फैक्ट्री ने उपज नहीं किया, उपज तो वो धरती से हुआ है। अब धरती ने वो कहां से लाया है, क्योंकि धरती जो है वो भगवान श्री कृष्ण का अंश है। भगवान कहते हैं, भूमि रापो नरो वायु खम्वनो, ये भूमि मेरा अंश है। और भगवान कहते हैं, अहम बीज प्रदा, मैंने हर एक वस्तु को बीज दिया है। तो अगर देखा जाए तो अल्टीमेट हर एक वस्तु के सृष्टा भगवान है। और यहाँ पर भगवान कहते हैं, दाता हम विश्व तो मुख, यानी सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा जी हूँ। अभी ब्रह्मा जी ने क्या किया है, सारी सृष्टि जितने भी, वैसे तो बहुत सारे असंख्य ब्रह्मांड हैं, और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुखी ब्रह्मा प्रधान है, अतः भगवान श्री कृष्ण का के प्रतीक है। वैसे तो बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, और हर एक ब्रह्मांड के अनुसार जो है उसके ब्रह्मा के अलग अलग मुख होते हैं। जैसे हमने वो कथा पढ़ी थी कि ब्रह्मा जी जब द्वारिका जाते हैं भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए, तब भगवान पूछते हैं कौन से वाले ब्रह्मा जी आए, कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी आए। और जब अंदर जाते हैं तब ब्रह्मा जी देखते हैं कि कितनी अनेकों असंख्य ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी, किसी के 100 सर हैं, किसी के 1000 सर हैं, किसी के 10,000 सर हैं। तो विभिन्न प्रकार के ब्रह्मा जी और शिव जी भगवान के दर्शन करने के लिए वहां पर आए होते हैं। लेकिन ये जो हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो ब्रह्मांड है, उसके ब्रह्मा के चार मुख हैं। और वो ये जो ब्रह्मा जी हैं, वो इस भौतिक जगत में सबसे बड़े सृष्टा हैं, सबसे मुख्य सृष्टा। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुखी ब्रह्मा प्रधान है। इस भौतिक जगत में हम जो कुछ भी बना रहे हैं, आज के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो जो कुछ भी बना रहे हैं वो भौतिक वस्तुओं को लेकर ही कोई वस्तु बना रहे हैं, परंतु वो कैसी वस्तु बना रहे हैं कि उसके द्वारा कोई दूसरी वस्तु खुद ब खुद से नहीं। जैसे अगर कोई साइंटिस्ट एक कंप्यूटर बनाता है तो कभी कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं बना है जो दो कंप्यूटर को अगर हम रख दें साथ में एक कमरे में तो तीसरा एक कंप्यूटर खुद ब खुद उसमें से निकलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हर एक कंप्यूटर को अलग से बनाना पड़ेगा, ऐसा है ना। लेकिन ब्रह्मा जी ने जो हम ये मनुष्यों को, जीवों को जो बनाया है, बस एक बार बना के छोड़ दिया, आगे पॉपुलेशन खुद ब खुद बंद हो रही है, ऐसा है ना। तो ये ब्रह्मा जी जो हैं वो मोस्ट इंटेलिजेंट, उनके पास जो है ना चार बुद्धि है, और वो किस तरह से इन जीवों को बनाते हैं, सृजन करते हैं, हर एक जीव को उनके कर्मों के अनुसार शरीर देते हैं। अब यहाँ भौतिक जगत में आप देखो करोड़ों जीव हैं, हर एक जीव की
मतलब जीव को बनाने वाला क्रिएटर सृष्टा जो है वो वही ब्रह्मा जी है, लेकिन हर एक जीव के जितने भी मनुष्य हैं उनके फेस हैं, फेस के ऊपर आंखें हैं, लेकिन हर एक की आंखें अलग अलग हैं। आंखों को छोड़ो, ऊपर जो आईब्रोज लगे हुए हैं वो सबके अलग अलग हैं, होंठ सबके अलग हैं, नाक, हालांकि सेम वही फेस अगर हम 10-15 दफा बनाएंगे ना, ड्रॉ करेंगे तो हमारा सेम बनता जाएगा, लेकिन ब्रह्मा जी के पास इतनी बुद्धि है कि हमेशा अलग अलग टाइप का उनसे है ना सृष्टा होती है, अलग अलग साइज अलग होती है जीवों की, मापदंड एक ही घर में पैदा होने उनके, एक ही माता के 3 बच्चे होंगे, सबकी फिंगर टिप्स अलग होंगी, सबका आकार अलग होगा, सबकी साइज अलग होगी, सबका फेस अलग होगा। तो ये ब्रह्मा जी जो है वो बहुत ही बुद्धिमान सृष्टा है, लेकिन ब्रह्मा जी जो है वो गौण सृष्टा है। गौण सृष्टा कैसे है कि ब्रह्मा जी सृष्टि तो कर रहे हैं, परंतु सृष्टि प्राप्त ये करने के लिए, सृजन करने के लिए उनको भी इंग्रेडिएंट्स जो है वो भगवान ने दिए। जैसे एक शरीर को बनाने के लिए उसको क्या क्या चाहिए होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो ये भगवान कहते हैं मेरी अपरा प्रकृति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति राष्ट्रदा। 7.5 में भगवान बताते हैं कि मेरी, यानी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भगवान ने दिए। तो मुख्य क्रिएटर जो है, सृष्टा जो है वो भगवान है, और गौण सृष्टा जो है वो ब्रह्मा जी है। उसके बाद मन बुद्धि, भगवान आगे कहते हैं अहंकार मनोबुद्धि एवच, मन और बुद्धि और अहंकार जो है वो भी मैंने प्रदान किया है। तो इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो भी भगवान ने दिया। अब सारी चीजें जो है ना वो ब्रह्मा जी को भगवान ने दे दी हैं, और ब्रह्मा जी उसको सजा के अच्छी सी प्लास्टिक कोटिंग करके और उसको बना के क्रिएटर बने हुए हैं, सृष्टा। लेकिन भगवान यहाँ पर कहते हैं दाता हम विश्वतो मुखम, तो भी ब्रह्मा ने सृष्टि को सृजन किया है। और जो भी वस्तु आप देखो ना, जब सृष्टि हुई है किसी चीज की, तो आप ये उसको देखकर मुझे याद करो कि मैं ही सृष्टि करने वालों में ब्रह्मा जी हूँ। तो भक्तों, भगवान तो कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, हर एक वस्तु को देखकर भगवान हमें बता रहे हैं कि आप मुझे याद कर सकते हो, हर एक शब्द को श्रवण करके आप मुझे याद कर सकते हो, ढलती हुई समय में हर एक वस्तु का क्षय होते हुए आप मुझे याद कर सकते हो, और हर एक वस्तु का सृजन होते हुए देखकर आप मुझे याद कर सकते हो। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सदैव भगवान को स्मरण करें, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट हिम। हर समय भगवान को स्मरण करने का एक ही तरीका है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कलैवनास्तैव गतिरन्तः। इस कलयुग में इसके अतिरिक्त तो और कोई तरीका नहीं है, कदापि नहीं है। तो ये तभी संभव है जब हम भगवान की कथाओं को प्रेम से श्रवण करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरि बोल।